ओम शांति। कल सभी ने बाबा के प्यार का स्वरूप देखा, छाया है मन पे, कितना प्यार करता है बाबा हमें। सोचा था कभी ऐसा? मेरे साथ एक बैठे थे तो वहाँ वो बड़ी टीवी लगी हुई, उस पे बाबा बहुत अच्छा दिखता है आपको, बहुत अच्छा। सामने बैठने से उसको देखना ज्यादा अच्छा लगता है, तो कह रहा कभी सोचा भी नहीं था भगवान इस पर हमारे पास आकर बैठे। तो हम सब का ये बहुत बड़ा भाग्य है कि परमात्म प्यार में हमारा जीवन चलता है। इस प्यार को हम बढ़ाएंगे, हमारे अंदर जितना प्यार होता है बाबा का प्यार उतना ही अनुभव होता है। अगर हम ही सूखे हैं तो क्या होगा? भगवान कितना भी प्यार करे हमें लगेगा उनको कर रहा है, हमें नहीं। ये लोग बहुत प्रश्न पूछते, अभी मैं खाना खा रहा, दो माताएं आ गई, थोड़ी सी जिनको VIP कहते हैं, कहा बाबा जी स्टेज पे मिलने जा रहे थे लोग, हमको मिले नहीं। उससे पहले बहुत अच्छी स्थिति थी, देखो एक संकल्प ने स्थिति बिगाड़ दी थी उनकी। प्रैक्टिकल होता है हर बार, ये हजारों को होता है, एक छोटा सा संकल्प स्थिति को बिगाड़ देता है। शायद बाबा ही नहीं प्यार करता है हमें, नहीं, जबकि सच्ची बात यह कि उन्हें प्यार करता ही नहीं। मैं नहीं यही कहा, प्यार एक बड़ी सूक्ष्म चीज है। वो आगे बैठने से, इधर आ जाओ माता है थोड़ी, वो आगे बैठने से आगे हो जाओ, आप थोड़ी पीछे की आ जाओ, केवल आगे बैठ जाए या बाबा के बिल्कुल पास चले जाए, उससे कोई बाबा प्रसन्न हो जाता है सब कुछ नहीं है। किन से बाबा प्रसन्न होता है? बोलो और बोलो, केवल याद ही थोड़ा ही, और कुछ उसका काम भी तो करना है कुछ। देखो तीनों चीजें जहां से बाबा ने मुझे शुरू की, तीन भाग्य बाप के द्वारा, और पालना क्या है? प्यार। बड़ी सुंदर बात है ये सूक्ष्म, उसका प्यार ही हमारे लिए पालना है। माताएं जानती है, माँ बाप का प्यार ही बच्चों के लिए पालना कराता है ना, पालना भी कराएगा प्यार। प्यार नहीं तो एक को बादाम खिलाएंगे दूसरे को मूंगफली, हो जाएगा ना, माताएं करेंगे ना, प्यार पालना कराता है। दूसरा टीचर द्वारा पढ़ाई, शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट चीज, भगवान टीचर बनकर आया है तो उन्हें भी बहुत प्यार करता है जो उसके बहुत अच्छे स्टूडेंट है। माताएं आगे आओ, आगे पीछे नहीं, पीछे वाले सब यहाँ, उमा बहन उठो उठो, मैं नाम लेके उठाऊंगा नहीं, तो इधर आ जाओ। देखो लेट वाले आगे बढ़ सकते, लास्ट को फास्ट, और इधर आ जाओ सब माताएं, इधर लाइन बनाओ, लास्ट को फास्ट की शुरुआत कर दो यहीं से। टीचर द्वारा पढ़ाई की पालना, स्टूडेंट लाइफ में सभी को अगर किसी क्लास में बहुत अच्छा टीचर मिला हो, याद रहता है ना उससे, उसमें सब पढ़ाया था। और यहाँ भगवान पढ़ाता है ऐसी पढ़ाई जो सचमुच हमारे मन का अंधकार दूर कर देती है, जो सच्ची गाइडेंस है हमारे लिए, मार्ग दिखाती है। अनेक प्रश्न जो उलझे हुए थे वो सुलझ गए। एक पीछे पहले एक समाचार सुनाना चाहता हूँ, लोग सुनाते नहीं है। मैंने जनसरोवर में पूछा, समाचार सुना है किसी ने? किसी ने नहीं। क्या? शारदा पीठ का शंकराचार्य भी कल बाबा से मिलने आया था, सुनाया? शारदा पीठ का शंकराचार्य और बाबा से मिलकर उसने जो आज अनुभव सुनाया वो ये था, हम सबके लिए ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे तो साउथ के लोग हिंदी नहीं जानते, लेकिन ये पहले किसी स्टेट का युवराज था और फर्स्ट क्लास हिंदी, और शंकराचार्य माना शंकराचार्य वही बनता है जो उस क्षेत्र का सबसे बड़ा विद्वान हो। तो बताया कि बाबा जाए, बोल दिया उसने शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों आए, मुझे 20 मिनट तक आंखों से पानी ही बहता रहा। जब सुना रहा था दादी बैठी थी जानते हो, काफी भी मेरे रोमांच खड़े हो रहे, दिखा रहा था कि देखो सब बाल खड़े हो गया, बूढ़ा नहीं है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें और भी सिखाई। एक बात जो बाबा कहते हैं, हम सब कहते हैं, हिंदू सब भी गलत है। उसने बताया बहुत सारे उदाहरण दिए, फारसी में, अरबी में हिंदू का अर्थ है गुलाम, काफिर। मुसलमान लोगों ने भारत वालों को, क्योंकि वो नमाज नहीं पढ़ते, इसलिए काफिर कहना शुरू किया, उसका उनका शब्द है हिंदू। उर्दू में हिंदू शब्द का अर्थ है गुलाम, अरबी फारसी में काफिर, उर्दू में गुलाम। जब मुसलमान यहाँ आए तो सबको गुलाम बनाते थे, कहा हिंदू है, शुरू हो गया हिंदू। कहा सनातन धर्म ही है जो बाबा ने कहा, आदि सनातन देवी देवता धर्म, यही यथार्थ है। कहा भारत में हर 4 किलोमीटर में एक शिवालय है, कहीं उसको शंकरालय नहीं कहते, महेशालय नहीं कहते, शिव शंकर का अंतर बता रहा था। देखो बाबा को एक माइक मिल रहा है, बिल्कुल समझो मर गया है यहाँ आके। तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छा समाचार है ना हम सब के लिए, गर्व की बात है। और बाबा के पास 2 शंकराचार्य आ चुके हैं, बनारस का जो उत्तराखंड का होता है, नॉर्थ इंडिया का, वो तो मुरली भी सुनता है, मुरली समझती है उसके बाद। और जब वो कहीं भी जाता है तो अपने ही आश्रम में जाके भोजन करता है, सोता भी नहीं है। पूछते हैं लोग उससे क्यों, कहा यही पवित्रता है आपके पास नहीं है। तो शंकराचार्य है ना, उसको किससे डरना थोड़ा है। शंकराचार्य माना हेड, हिंदू धर्म हेड, सनातन धर्म के हेड। 4 पीठ हैं भारत में, चारों दिशाओं में 4 शंकराचार्य, जो पहले शंकराचार्य थे उन्होंने 4 पीठ स्थापित कर दी थी कि सनातन धर्म की पालना करने के लिए ये 4 शंकराचार्य सदा कार्यरत रहेंगे, उनके नीचे मां मंडलेश्वर हो गए। तो ये बहुत अच्छी बात है, 2 शंकराचार्य कम से कम आधे आधे ब्रह्मा कुमार तो हो ही गए, और महिमा करने में पूरे पूरे पवित्र तो ये हैं ही, ये पवित्र ही होते। और सन्यासी हो या ना हो, शंकराचार्य माना बाल ब्रह्मचारी उसको होना चाहिए, ब्राह्मण परिवार से ही होना चाहिए, सबसे है इनके। तो ये भी समाचार बहुत अच्छा है हम सब के लिए। मिलने तो बहुत VIP आते हैं जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, इन ऑफिसर्स का महत्व आजकल नहीं है समाज में, क्योंकि उनका करप्शन का रोज झंझट अखबारों में आता है। तो ऑफिसर्स कुछ हमारे बारे में कहें, लोग कहेंगे इन्हें पैसा दे दिया होगा ब्रह्मा कुमारियों ने, और शंकराचार्य वो अथॉरिटी, बहुत अच्छी बात। तो देखो बाबा का अपना कार्य कितना सुंदर चल रहा है, उसको आज जाना था, वही वो बता रहा है, मुझे ज्यादा नहीं बोलना है, मेरी ट्रेन है। जानकी दादी से जो मिलने लगा तो दादी तो फिर छोड़ती नहीं ना, अपने मन से मिलती है, उसकी ट्रेन मिस हो गई तो आज भी रह गया है कल जाएगा अभी दादी तो आयु में बड़ी है, वो माँ ही समझते हैं, और स्पिरिचुअली रूहानी दृष्टि से वो जीत है, तो बहुत सम्मान से लोग मिलते हैं। तो मैंने कहा उनको वही, मैंने कहा रिकॉर्ड कर रहे हैं इसकी स्पीच, उसने कहा कर रहे हैं, टीवी भी चल रही थी वीडियो रिकॉर्डिंग। तो यदि उससे पूछ के ये बात चैनल पे प्रसारित की जाए, उसे पूछना जरूर होगा। तो ये अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए बड़ी सुंदर बात होगी, और बहुत सारे हिंदू धर्म को मानने वाले बाबा की ओर खींचेंगे। तो देखो बाबा हमारी पालना रोज कर रहा है पढ़ाकर, अगर वो हमें न पढ़ाए क्या होगा हमारा, रोज सवेरे वो हमें न पढ़ाए, या ऐसा कहें हम न पढ़ें, सूखापन आ जाएगा ना, माया पावरफुल हो जाएगी। तो पढ़ाई बहुत बड़ी पालना है, आप सब जानते हैं, जो बहुत अच्छे लिखे पढ़े लिखे दुनिया में, उनमें अपना गौरव अलग रहता है ना, रौनक रहती है। वो पढ़े लिखे नहीं है वो ये सोच के ही कमजोर रहते हैं, हम पढ़े लिखे नहीं है यही सोचते हैं ना बार बार, माता भी सोचती होगी हम पढ़े लिखे नहीं है। कौन कौन बिना पढ़ी लिखी माताएं बैठी है, हाथ उठाओ। और यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने आ गई उसका क्या हुआ? भगवान जो पढ़ाने आ रहा है अब उसके नशे में आ जाओ। बिना पढ़े लिखे नहीं, सच्चे अर्थों में शिक्षित हैं बाबा के सभी बच्चे। अब देखो ये एमएससी का डिप्लोमा और एमएससी की डिग्री कोर्स चला ना, तो ये अपना ही है ना सारा। सबको एमएससी की डिग्री मिल जाएगी, बिना पढ़े लिखे भी कर सकते थे अगर आगे चल के हो गया। अभी तो बीए वालों को लेते हैं, लेकिन आगे चल के यदि बिना पढ़े लिखो को भी कर देंगे, कोई भी करे तो बिना पढ़े लिखे एमएससी हो जाएंगे डायरेक्ट। तो कितनी अच्छी पालना बाबा हम सबको दे रहा है। लगता है सभी को पढ़ाई पालना है, लगता है या नहीं? पूछो अपने से। उसके लिए पढ़ाई से बहुत प्यार होना चाहिए। लौकिक में भी जिन बच्चों को पढ़ाई से बहुत प्यार होता है वो अपना टाइम और चीजों में नहीं लगाते। चाहे कितनी भी टीवी चल रही हो घरों में, वो नहीं जाते। पढ़ाई से बहुत प्यार है, वो समझते हैं ये हमारे जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अब पढ़ेंगे जीवन भर सुखी रहेंगे हम, अब पढ़ेंगे तो 5000 साल सुखी रहेंगे। 2500 साल तो प्रारब्ध मिलेगी, 5000 साल सुखी रहेंगे। ज्यादा कमाना नहीं पड़ेगा। जिसके पास ज्ञान धन बहुत होगा उसे द्वापर युग के बाद भी अथाह धन संपदा प्राप्त होती रहेगी। और जो ज्ञान धन दान करेंगे उनमें दान करने का संस्कार रहेगा, वो द्वापर युग से भी दान करेंगे। स्थूल चीजें उसके रिटर्न में उनके भंडारे भरपूर रहेंगे, क्योंकि दाता के भंडारे ही भरपूर रहते हैं। जो सोचते हैं 100 रुपए हैं खर्च क्यों करें काम आएंगे, उनके 100 रह जाते हैं। और जो सोचते हैं जल्दी सेवा में भी लगा दो खर्च भी करो, 80 खर्च कर दिए तो कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? 200। 1 0 और लगाओ। जानते हैं ये मैथमेटिक्स, ये बाबा पढ़ाता है, ये कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता मैथमेटिक्स। बनेंगे या नहीं 200? 20 नहीं 200 हो जाएंगे, अगले दिन हो सकते हैं। अनुभव करके देखो सभी, दाता के भंडारे भरपूर रहते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा आप दे दो सारा जो लाए हैं, मैं एक सिद्धांत बता रहा हूँ आपको, आप देखेंगे बहुत अच्छी अच्छी चीजें। मुझे भी इसके बहुत अच्छे अनुभव, बहुत अच्छे। तीसरी पालना, सदगुरु के रूप में वरदान। देखो सदगुरु का मंत्र भी होता है, सदगुरु मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग भी दिखाता है, पर बाबा जोर दे रहे हैं वरदान। हम महसूस कर लें बाबा से हमें वरदान मिले हैं। क्या सचमुच लगता है कि ये चीज हमारे जीवन में वरदान है? बात करें सभी अपने से, ये चीज मेरे जीवन में वरदान है। बहुत अच्छी अच्छी बातें बाबा से मिल रही हैं, सिद्धियां मिल रही हैं हमें बाबा से, वरदान मिल रहे हैं। जिस चीज को हम वरदान स्वीकार कर लेते हैं वो वरदान बन जाता है। आप अभ्यास कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। रोज सवेरे कोई भी एक वरदान लेने लगे, आप अपने मन में निश्चित कर दो मुझे बाबा से ये वरदान लेना है। संबंध उदाहरण के लिए देखो, लौकिक में वरदान कैसे होते हैं, वो लौकिक होते हैं। भक्त ने तपस्या की और वरदान भगवान ने कहा मांगो, क्या वरदान मांगते हो? भक्त बड़ा लालची था, कहा जिसको मैं हाथ लगाऊं सोना हो जाए। तथास्तु, वरदान मिल गया, खाना खाने बैठा, रोटी को हाथ लगाया सोने की हो गई। परेशान हो गया अब खाऊं क्या, पानी पीने को उठाया सोना बन गया, सब्जी सोने की हो गई, क्या करें अब? फिर तपस्या करनी पड़ी, वरदान वापिस लो। वरदान वापसी की तपस्या शुरू हुई। हम बाबा से वरदान ले लें, जहां हम हाथ लगाएं सफलता हमारा जन्म से अधिकार बन जाए। जिस पर हम दृष्टि डाल दें उसके विचार शुद्ध हो जाए, जहाँ हमारे कदम पड़ जाए वहाँ के विघ्न नष्ट हो जाए। जिसको हम ज्ञान दें वो बाबा का बच्चा बन जाए। ये वरदान है, असली वरदान ये है। हम जिसको ज्ञान दें, जिसको कुछ समझाएं, वो अपना जन्म जन्म का भाग्य बनाने के लिए तैयार हो जाए। रोज सवेरे बाबा का हाथ अपने सिर पर रखा लें और बाबा के मुख से सुने और उसको अपने नशे में लाते जाएं। वरदान की अनुभूति का सर्वश्रेष्ठ साधन है उसको अपने नशे में लाते जाएं, स्वीकार कर लें मुझे ये बाबा से वरदान है। ये नहीं हमारे पास संकल्प चले, पता नहीं मिला या नहीं मिला, कहीं ये मेरी कल्पना ही तो नहीं है, कहीं मैं अपने दिल को खुश तो नहीं कर रही हूँ। स्वीकार कर ले ये वरदान मिल गया है, उसको यूज करने लगे दिन में, धीरे धीरे वो वरदान अविनाशी बन जाएगा और ये वरदान फिर पूरा कल्प चलेंगे, पूरा कल्प चलेंगे। ये ध्यान रखना है हमें। तो बाबा से तीनों तरह की पालना हमें मिल रही है, यही सबसे बड़ा भाग्य है। तीनों पर सभी ध्यान देंगे, तीनों का मूल हो गया मुरली, रोज मुरली। मुरली से ही तो पता चलता है ना भगवान हमें कितना प्यार करता है, वो हमें कैसा देखना चाहता है। कितनी बड़ी बड़ी बात बाबा कह रहे थे, बाप समान बनना, उमंग कितना दिलाया, सबने हाथ उठा दिया। उन्होंने भी हाथ उठा दिया जो कुछ नहीं समझ रहे थे कि पड़ोसी बहन ने हाथ उठाया, कुछ हुआ है मैं भी उठाऊं, कुछ हुआ है हाथ उठा रहे सभी मैं भी उठा दूं, ऐसा भी बहुत होगा। लेकिन बाबा कितना उमंग बढ़ाया, मुबारक दी, खुश हुए। बाप हाथ उठता देख कर ही खुश होते हैं। फिर कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनाई, अब आप सुनाएंगे, आपको क्या अच्छा लगा थोड़ी सुनाए। सुभावनाएं स्वभाव संस्कारों को तीव्रता से बदलना है और उसका तरीका, अब देखिए इसको आप जोड़ें, बहुतों की समझ में नहीं आया, हमारे स्वभाव संस्कार सुभावना से कैसे बदलेंगे। यहाँ बाबा का कहने का ये भी अर्थ था, स्वभाव संस्कारों के कारण जो आपस में टकराव होता है, जिससे सेवा की शोभा समाप्त हो जाती है, जिससे रूहानी वातावरण नष्ट हो जाता है, सबको अनुभव होगा ना, जरा भी मन मुटाव हो जाए तो सब कुछ बेकार लगता है। ऐसे स्वभाव संस्कार ना हो, एक दूसरे के लिए शुभ भावना होगी तो टकराव नहीं होगा, साथ में अपने लिए भी शुभ भावना शुभ काम। मैं आपको शुभ भावनाओं का एक दूसरा रूप कह देता हूँ, जिनके साथ भी आप रहते हैं लौकिक में, गणेश पानी, जिनके साथ भी आप लौकिक में रहते हैं, अलौकिक में रहते हैं, उन्हें आप बहुत अच्छी भावना से देखेंगे। अलौकिक वालों को कैसे देखेंगे, ये सभी देव कुल की महान आत्माएं हैं, ये सभी भगवान के बच्चे महान हैं। अब देखो मैं यहाँ बैठा हूँ, आप सबको इस दृष्टि से देखो, सब देवी देवता आ गए हैं यज्ञ सेवा करने, फिर से देवता बनने के लिए इसलिए आ गए ना, ये यज्ञ हमें फिर से देवता बना। जो देवता थे वो घूमते फिरते देखो कैसे हो गए हैं, और फिर बाबा की फैक्ट्री में पड़ गए हैं, देवता बना के निकाल देगा, ऐसी फैक्ट्री लगाई है ना, भगवान की फैक्ट्री। देखो जरा इस दृष्टि से ब्राह्मण परिवार को, ये विचार ही शुभ भावना है, ये फिर से देवता बन जाएंगे, ये श्रेष्ठ कामना है, अपने लिए भी ऐसा ही। इससे हमारे मन में दूसरों के लिए सम्मान भी रहेगा और श्रेष्ठ भावनाएं स्वतः ही रहेगी। लौकिक में भी आप सभी को इसी नजर से देखो, क्योंकि जो आपके परिवार में हैं उनमें से अधिक आत्माएं देवकुल की ही हैं, आज नहीं तो कल आएंगे। मैंने पहले भी एक बात सुनाई है, वो मुझे ज्यादा याद रहती है। एक भाई मिलने आया बाबा से पिछले से, तो मेरे से मिलाया, ग्रुप था उनका, आप ही बताया तो मेरी युगल ज्ञान में चलती है 25 साल से, और 22 साल से मैं ब्रह्मा कुमारियों का अति विरोधी रहा हूँ, गाली देता रहा हूँ, अब मैं आ गया। तो देखो, उसको देखकर कोई कहता है ये देवकुल की आत्मा है, सब कहते हैं तो पता बड़ा पापी है, भगवान को भी गाली देता है, ब्रह्मा बाबा को भी, लेकिन वो देवकुल के ही थे ना। गाली दे के उनका पाप शिशुपाल की तरह पूरा हो गया, 100 गाली पूरी हो गई और उनका भाग्य जग गया। उसमें भी ये दिखा, लेकिन हमने जो उसको रतन चक्र से काट दिया तो वो आत्मा माँ उनकी मान्यता अनुसार परमात्मा में समा गई, यानी उसकी मुक्ति हुई। एक बात, दूसरी बात कौन सी अच्छी लगी? मेरा बाबा, बहुत अच्छी बात है, वो सबको अच्छी लगनी चाहिए। इसको इस ढंग से हम अपनी गुड फीलिंग में ले आए, जो भगवान है वो मेरा हो गया, कितने समीप आ गए हम उसके। संसार में और तो कोई कहना भी नहीं जानता कि भगवान मेरा है, सुना किसी के मुख से, कोई शंकराचार्य भी नहीं जानता, भगवान मेरा है। इसको अपनी फीलिंग में लाएं, हम उसके हो गए, वो हमारा हो गया है, कितनी बड़ी बात हो गई। बहुत अच्छी बात है ये। मेरे पर क्या होता है? अधिकार। बस ये अधिकार बहुत बड़ी चीज है। भगवान पर कोई अधिकार फील करे, बहुत अच्छे अनुभव जीवन में किए जा सकते हैं। रोज अधिकार, एक कुमार मिला मुझे अभी, मैं बाहर गया था इधर कोल्हापुर की तरफ, उसको बहुत नशा है, इंजीनियर है। कहा बाबा कहता है मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मैं तो कह देता हूँ आओ ये काम, ऐसे ही ओबीडियंट सर्वेंट हो गया कहने के लिए, आ जाओ। क्यों कहा? नहीं तो मैं ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, बड़ी अधिकार की बात है ना, शब्द अच्छा तो नहीं लगता उसके लिए, पर उसने ऐसा किया हुआ है, बड़ा अधिकार, और उसको इसके अनुभव होते हैं। तो मेरा है वो, बढ़ाए सभी फीलिंग को, यही वो फीलिंग है जो हमारे और बाबा के बीच में क्या पैदा कर देती है, बहुत प्यार, प्यार, बहुत प्यार। लोग भगवान से प्यार करते हैं, पर यदि उनसे पूछो क्यों, भक्ति वाले क्या उत्तर देंगे? स्वार्थ है, कुछ चाहिए इसलिए प्यार कर रहे, वो बनावटी मंत्रों में, भजनों में, कीर्तनों में। और हमारा प्यार है अपनेपन का, रियल प्यार। और आगे चलें, क्या अच्छा लगा? लव में पास है नहीं, और क्या अच्छा लगा? समर्पण, बहुत गहरी बात थी। समर्पण, सभी समर्पित हैं या मधु खाना माताएं जो जो कहती हैं तन मन धन सब तेरा, मुश्किल हो गई माताओं को हाथ उठाना। नहीं, तन मन धन सब मेरा, क्या लागे तेरा, ऐसा क्यों? माताएं समर्पित नहीं, नहीं हो जाओ, नहीं है तो अच्छे। तन मन धन परिवार जन कर्तव्य सफलता कर्म का परिणाम धन संपत्ति मकान दुकान सब के मुख से नहीं निकल रहा, भाई बोलेंगे, भाई बोलेंगे सब कुछ, और माताएं बोलेंगी। माताओं को उमंग नहीं आ रहा, कमाया हमने और बाबा को दे दें, बाबा कुछ भी नहीं लेगा, कुछ नहीं लेगा। कितनी अच्छी बात कही, तन तेरा, तो देहभान और देह अभिमान कहां से आ गया? एक ही बात, तन वो हमारा लेकर करेगा भी क्या, उसको हमारा तन क्या करना। ये एक बहुत सुंदर अभ्यास है हमारा, तन तेरा बहुत अच्छी फीलिंग हो जाएगी। देहभान जैसे ब्रह्मा बाबा का उदाहरण था, तन बाबा को दे दिया, कहते थे ना बाबा किराए पे दे दिया, लोन पे दे दिया, बहुत किराया देता है क्योंकि वो जो किराएदार है बहुत साहूकार है, पूछता ही नहीं कितना लोगे किराया, कहता है मेरा सब कुछ तुम्हारा अपना तन दे दिया ना मुझे, हम भी अपना तन उसके हवाले कर दें, तन तुम्हारा, तो तन से कोई भी गलत काम नहीं कर सकते। अरे आंखें तुम्हारी, कर्मेंद्रियां तुम्हारी, सुंदर चिंतन करें आप, इनसे हम कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। ये चिंतन हमें सोल कॉन्शियस बना देगा। तन तेरा तो कौन बच गया पीछे? आत्मा। देहभान और देहाभिमान छूट जाएगा। दोनों का अंतर तो समझते हैं ना, देहाभिमान माना अहंकार, मैंपन बहुत ज्यादा, और देहभान माना देह हो गए, हम देह हो गए ना आत्मा भूल के, है हम आत्मा हो गए देह, ये देहभान हो गया, इसको छोड़कर हमें आत्मिक फीलिंग बाबा ने कराई, और देहाभिमान है टोटल अभिमान। कहेंगे भाई ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है लेकिन बड़ा अहंकारी है, ये हुआ देह अभिमान। इस व्यक्ति को जरा सी ड्यूटी मिली है और इसमें अभिमान आ गया, मैं इंचार्ज हूँ, ये हो गया देह अभिमान, मेरा माल भगवान का हो गया मेरा, मेरा सो तेरा कहने के बजाय जो तेरा था वो भी मेरा उल्टा कर दिया, यहाँ लेने हैं हमें बाबा से सब खजाने, उनको मेरा करना है, कितनी छोटी चीजें नहीं, जिसको हम जिसका हम अभिमान करते हैं, यदि हमें अपनी भविष्य प्राप्ति सामने दिखाई दे तो हमें लगेगा तुम किसका अभिमान कर रहे हो। बाबा ने क्या कहा तीन चार दिन पहले, बॉम्बे जितना सारा है उतना उतना सतयुग का एक हीरा होगा बस, एक हीरा, और घरों में जड़े होंगे, कैसे ही पड़े होंगे, उनकी कोई कीमत ही नहीं होगी, कीमत तो तब है ना जब वो चीज है नहीं, तो वो बिखरे पड़े हैं तो कीमत कहाँ उसकी। तो अगर हम अपनी भविष्य प्राप्ति को सामने लाएं, तो वर्तमान में मिलने वाले मान, छोटी वस्तुएं, धन संपत्ति, ये हमें बिल्कुल छोटा और फीका नजर आएगा। तन तेरा, करें सभी इसका अभ्यास, तो उसको क्या अच्छा लगा, हिम्मते बच्चे मत देगा। ये बहुत अच्छी चीज है कि हम दृढ़ता रखें अपने अंदर, मुझे करना ही है, लेकिन क्या करना है वो भी पता हो, ये नहीं मुझे करना ही है क्या, वो क्लियर हो, हमारे पास एक प्लानिंग हो कुछ करने की, उसमें दृढ़ता हो। जो अलबेले होते हैं, बाबा ने कहा अलबेला अपन दिखाई देता है बाबा को, जो अच्छा नहीं लगता, माताओं के बच्चे अगर पढ़ने में अलबेले हो तो कैसा लगेगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगता ना, आपको कोई काम दिया जाए और आप उसको करने में अलबेले हो, देने वाले को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो अलबेलेपन के दो बिल्कुल प्रैक्टिकल लक्षण सुना दिए बाबा ने, नहीं तो में थकान होगी, इस पे जरा विचार करेंगे। दूसरा, चेहरे से खुशी झलकेगी नहीं। थकान कैसे होती है, देखो माया से लड़ रहे हैं, थोड़ी सी बिहार हो गई, निराश थक गए, सेवा में आ गए, यहाँ किसी ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, पहले ही बहुत दुखी थे, यहाँ भी वही थक गए, थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ा, हम तो सोच के आए थे घर में बहुत काम, यहाँ थोड़ा ठीक रहेंगे, यहाँ भी वही काम, थक गए, कोई अपनी बीमारियों से थक गए, कोई दूसरों के बातों से थक गए, कोई छोटी छोटी जिम्मेदारियों से थक गए, दूसरों के व्यवहार से थक गए। व्यवहार ज्यादा थका रहा है आज आत्माओं को सारे संसार में। अगर थकान हो रही है लोगों को तो दूसरों के गलत व्यवहार से। बहुत ध्यान देने की बात है दूसरों के गलत व्यवहार। अभी मैंने बताया मैं कोल्हापुर में था, एक सेंटर की ओपनिंग थी, एक भाई मेरे यहाँ में कार में बैठ गया था, मेरी बात दो मिनट सुन लो, छोटी आयु थी उसकी, कहा मेरी पत्नी ने सुसाइड कर लिया है, मैं बहुत दुखी हूँ, ध्यान में आ गया इसीलिए। क्या हुआ? कहा मेरे बड़े भाई की जो युगल थी यानी इसकी जेठानी, उसके व्यवहार से बहुत तंग थी, आयु केवल 25 साल थी, बहुत तंग थी उसके व्यवहार से। रोज कहती थी मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता है यहाँ, ये मुझे बोलती रहती है कुछ कुछ, कभी घर वालों के लिए बोलेगी तुम्हारे घर वाले ऐसे हैं, माताएं ये ज्यादा बोलते हैं, गुस्सा आएगा दूसरे पर, गाली देंगे उनके भाइयों को और माँ बाप को, तुम्हारे माँ बाप भी ऐसे ही हैं, जैसे सारी जानती हो वो कैसे हैं, सारा वे सुसाइड कर लिया। तो मैंने उसे बताया क्या करूं बेचारा, पूछ रहा बहुत दुखी, आप जानते हैं कितना दुख होता है, मैं बच्चे भी नहीं। कहा मुझे एक ही बात का दुख है कि उस दिन रात को वो मुझे कह रही थी आज मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे इसने बहुत कुछ बोला है, मैंने उससे बात नहीं की ज्यादा, अगर मैं उससे बात कर लेता तो शायद उसका मन हल्का हो जाता, इसलिए मेरा मन मुझे बार बार खाता है कि मेरे कारण भी उसने सुसाइड किया। तो देखो ऐसी व्यवहार, दूसरों का बुरा व्यवहार सहन नहीं होता, लेकिन हमें ये सोचना है कि हम दूसरों से अच्छा व्यवहार करें। हम ये अपेक्षा ज्यादा रखते हैं दूसरे हमसे अच्छा व्यवहार करें, पर हमें दूसरों से अच्छा व्यवहार करना है। शुरुआत हमें यहाँ से करनी चाहिए, परिवारों में मुझे सबसे अच्छा व्यवहार करना, सभी विचार करें ये मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, इसलिए मैं परेशान होकर मरने की सोच लूं, इससे अच्छा है मैं सबसे अच्छा व्यवहार करूं, तो मेरे अंदर दूसरों के व्यवहार को सहने की शक्ति रहेगी। अगर हम भी व्यवहार बिगाड़ेंगे तो हमारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो थकना नहीं है और खुशी, सेवा भी कर रहे हैं, बाबा ने कहा ना पुण्य जमा हो रहा है, लेकिन खुशी नहीं, हमारा पुण्य जमा हो रहा है। जो कुछ हमने कल देखा अगर उसको ही हम याद करें तो 15 दिन तो बहुत खुश रहेंगे ना कम से कम, उसके बाद फिर देखेंगे कौन मिल गया हमें, कौन पालना कर रहा है। हम अपने जीवन में अपनी खुशी को बहुत बड़ा, खुशी बहुत बड़ी चीज है, सबसे बड़ी भी कह सकते हैं ये खजाना। जिसके जीवन में खुशी है बीमारियां भी उसको थकाएंगी नहीं, व्यवहार भी थकाएगा नहीं। आप यदि संकल्प कर लें, कोई कैसा भी है, कोई मुझे कुछ भी कहता है, मुझे खुशी छोड़नी नहीं है। क्या कहा बाबा ने, बातों का काम है आना और हमारा काम है विजयी बनना। अंडरलाइन करके नोट रखें अपने पास, कलयुग का अंत है, यहाँ बातें तो हैं ही, यहाँ सब कुछ अच्छा कैसे हो सकता है, नहीं तो ये सतयुग ना होता। अगर यहाँ सब कुछ अच्छा होता, कई कहते हैं लोग बहुत बुरे हो गए, ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं क्या, पापी लोग मौज कर रहे हैं, तब मैं उन्हें वो गीत सुना देता हूँ, रामचंद्र कह गए सिया से, क्या हंस चुगेगा दाना तिनका कौवा मोती खाए। कौवे तो साहूकार होंगे ही है काला, अगर हंस साहूकार हो जाए तो ये सतयुग होगा ना। कलयुग में सब कुछ उल्टा है ना, पापी सुखी पुण्यात्माएं दुखी, इसमें सोचना नहीं है, पर पुण्यात्माएं दुखी नहीं होते, ये तो देखने वालों को लगता है। इनके पास पैसा कम है, इन्होंने अच्छी टीवी नहीं खरीदी, इन्होंने बच्चों को लैपटॉप नहीं खरीद के दिए, देखा इनके पास पैसा ही नहीं है, वो पापी हैं, बच्चों को क्या क्या दिया हुआ है, लेकिन सुखी कौन होंगे, पुण्य आत्माएं। पाप आत्माओं के पास धन हो सकता है, धन का सुख नहीं, इसलिए ये कलियुग का अंत है। हर बुराई अपनी अंतिम चरम सीमा पर है, हर पाप हर विकार अपने बिल्कुल एक्सट्रीम पर है, चरम सीमा पर। इसके लिए कुछ सोचना नहीं है, बातें हैं हमें विजयी रहना है, ये सोचकर हमें हल्का हो जाना है। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो तो करेंगे ही। एक आत्मा का केस मेरे पास रहा इस बार नीचे अभी 5 दिन, बहुत दुखी। जब उसने कहा मैं 18 साल से सोई नहीं हूँ, तो मैं उसे देखने लगा रहूंगी। 18 साल से सोई कि मेरी आंखें खुली रहती है, रात खुली आंखों से गुजार देती हूँ। मैंने उसको कई विधि बताई, आज वो रोज मेरे पास 2 बार आती। आज मैंने उसे कहा, मैंने कहा अब तुम ज्ञानी हो, मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, तुमने बहुत लोगों की नींद खिलाई है, जन्म जन्म कष्ट दिया है बहुत, उनके जो बद्दुआएं हैं वो अब तुमको सोने नहीं दे रही हैं, भगवान तो मिल गया भक्ति के कारण, क्या करूं। तो रोज उनसे सच्चे दिल से चलो। और भी विधि मैंने कई उससे कराई, योग का तो प्रश्न ही नहीं, उसके जीवन में संकल्प ही नहीं चला सकती। मैंने कहा लिखो, मैं एक महान आत्मा हूँ, कहा मैं लिखा भी नहीं जाता, हाथ कांपते हैं। तो रहम भी आता है, लेकिन उनके पाप कर्मों के फल को भी दिखाई देता है। कि जो ये भी नहीं सोच सकती मैं महान आत्मा हूँ, कहा मैं जानती हूँ मैं महान हूँ, पर नहीं हो रहा है कुछ मुझसे, क्योंकि पाप का फोर्स बहुत ज्यादा है। 5 दिन मैंने कराया, कल मुझे कहा मेरा ब्रेन थोड़ा शांत हुआ है, आज कहा बाबा से मिलके फिर गड़बड़ हो गई है। बाबा से मिलके सोच ले आप इस गति को, क्योंकि जहाँ पाप ज्यादा होते हैं वो उखड़ जाते हैं, भगवान से मिलकर फिर धीरे धीरे शांत हुआ। फिर जैसे वो समय बीता उसका चित्त फिर शांत होने लगा। तो ये पाप की गति, हमें इसको समझकर पाप से बचना है। कौन सा पाप अब हम करते हैं, अधिक ब्राह्मण जो पाप करते हैं, दूसरों को दुख देना, अहम वर्ष, मैपन वर्ष, स्वार्थ वर्ष, इससे हम बचें। कुछ भी बोल देना किसी को, किसी का अपमान कर देना, किसी की खुशी छीन लेना, किसी के योग को डिस्टर्ब कर देना, कमरे में सोने न देना, माता इकट्ठी सोती है ना, सोच लो, ये सब अब बड़े पाप हैं ब्राह्मणों के लिए, ये बड़े पाप हैं, इनसे सभी बचेंगे। और क्या अच्छा लगा, मैं चाहूंगा हम 9:45 तक क्लास चलाएं, चलेगा। और क्या किसको अच्छा लगा है? नहीं नहीं, क्या अच्छा लगा, ब्रह्मा बाबा को कॉपी करो, बाहर कॉपी करना मना, यहाँ कॉपी करना स्वीकृत है, भगवान की आज्ञा है। और बोलो, पुलिस तो पैसे लगा दो, नहीं, पुरुषार्थ की गति को ऐसे तेज कर दो जैसे कागज पर बिंदी कितने में लगती है। अब मुझे एक बात और करनी है, जिसके लिए मैंने आपसे 15 मिनट का समय चाहा, वो ये, बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ की बात कही और कहा साधारण पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थ में बदलो। हम इसकी एक प्लान बनाना चाहते हैं, चाहेंगे सभी तीव्र पुरुषार्थ। साधारण पुरुषार्थ क्या है, सवेरे उठे, योग लगाया, मुरली सुन लिए, सारा दिन सेवा की, ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजा, खड़े हो गए, मन भले ही भागे खुद खड़े हो गए और दिनचर्या पूरी हो गई। कई बहने तो अंग्रेज बहने होती ना, सड़क के बीच में ही खड़ी हो जाती, अगर रोटी का टुकड़ा मुंह तक गया तो यहीं रोक के खड़ी हो गई, गीत बज गया है, ये नहीं कि वापिस रख दो, किसकी जरूरत नहीं। मन को खड़ा करना है ना, मन को शांत करना है। फिर मैं देखता था इधर उधर भी देख रहे, बीच में खड़े हो गए और भी खड़े हैं क्या, योग कहाँ लग रहा है। तो हम इसको दिखावा न बना दें। ट्रैफिक कंट्रोल का अर्थ है उस समय हम कुछ अभ्यास कर मन की ट्रैफिक को रोक दें, कुछ अभ्यास दे दें। केवल खड़े हो जाना देखने वालों को तो अच्छा लगता है। एक बार हमारे यहाँ बहुत पहले की बात है, पंजाब से बहुत पंजाब केसरी अखबार है, पंजाब केसरी, उसका एडिटर रमेश आर्य समाजी थे, उसका बाप जगत नारायण, उसका बाप लाला लाजपत राय, सुना है ना, उसका ये पोतरा लाला लाजपत राय भारत को स्वतंत्र कराने के लिए स्वतंत्र सेनानी हुए ना, उसका लड़का लाला जगत नारायण जो उस अखबार का संपादक था वो पहले यहाँ आया, उसको उग्रवादियों ने मार दिया था, आतंकवाद था ना पंजाब में, फिर उसका लड़का रमेश वो एडिटर था उसको भी उग्रवादियों ने मार दिया था, अब उसका लड़का है। तो वो इस बात से बहुत खुश था। मधुबन छोटा सा कॉन्फ्रेंस हुई, 2000 लोग आए, भीड़ भाड़, गीत बजा, सब वहां के भाई पत्थर खड़े हैं सब, उसको बड़ा पसंद आता था। उसने यहाँ से जाके 7 लेख लिखे पंजाब केसरी में लगातार, और आर्य समाजियों को कहा तुम तो केवल चिल्लाते हो, वो भी आर्य समाज, मैं पन तुम में अहंकार बहुत आ गया है, अगर कुछ सीखना है ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ जहाँ योग साधना इतनी ज्यादा कराई जाती है, उसका वर्णन किया। तो इन चीजों का इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। तो हम साधारण पुरुषार्थ को समाप्त करके पुरुषार्थ की गति को फास्ट करेंगे। अब गीत बज जाए, इसके बाद हम इसका एक प्लान बना लेते हैं, संस्कार परिवर्तन। कैसे संस्कार चाहते हैं हम और कैसे नहीं चाहते, हम अपने किन संस्कारों को बदलना चाहते हैं, 5 निकाल, नहीं पुराने कौन से, पोतों को पता ही नहीं चलता कि बदलना क्या है, 5 निकालेंगे ज्यादा नहीं, 25 की लिस्ट हो सकती है पर हम 5 निकालेंगे। पहला, बुरा बोलने का संस्कार। संस्कार होता है ना, रह नहीं सकते, बोल ही देते हैं। किसमें बदलेंगे इसको, सॉफ्ट स्वीट वाणी, मधुर वाणी। दूसरा, कटुता के संस्कार को, तनाव में रहने के संस्कार को, चिड़चिड़ेपन के संस्कार को, सरलता का संस्कार, सहज भाव से जीवन जीना, परेशान रहने के संस्कार को, खुश रहने का संस्कार। बोलो अब विचार हुआ कुछ, ज्यादा सोचने के संस्कार को, चित्त को शांत रखने का संस्कार। एक और बताएं, ठीक बोल रहे, और बोलो संस्कार, आदत। हाँ, कल कर लेंगे हो जाएगा, बाबा ने कहा ना, अलबेले बन के वही संकल्प हैं, तो दृढ़ता के वही संकल्प हैं। तो अलबेलापन हो जाएगा, कर लेंगे, इसको करना है, ऐसा दृढ़ता का संस्कार। बहुत लोगों में दृढ़ता का होता है, कई कुमारों में देखो संस्कार होता है, अपने कपड़े धोने हैं, आज तो एक ही जोड़ी है, कल धो लेंगे, कल 2 हो गए, अरे छोड़ो संडे को ही धो लेंगे, 5-6 हो गए, अब बहुत हो गए, तो अब मुरली छोड़ देते हैं, सेवा छोड़ देते हैं। ठंडाई के संस्कार, भाई लोग भोजन बनाएंगे कुमार तो किचन साफ करना ये हो बड़ी मुसीबत है, तो सोचते रहेंगे बड़ा भारी काम हो गया, यही सबसे भारी काम है, बाकी सब ठीक है। संस्कारों को बदलने के लिए एक ही अभ्यास करेंगे, अपने देव स्वरूप की स्मृति 2 बार, ज्यादा नहीं। परसों तरसों बाबा की मुरली में था, ब्रह्मा बाबा बोल रहे थे मुझे कितना नशा रहता है, मैं जाकर नारायण बनूंगा, कृष्ण बनूंगा, तुम्हें नहीं रहता। विधाई बोल दिया, सच बोला या झूठ बोला, बाबा को लगता ही नहीं, रहता ही नहीं, हम देवता बनेंगे, हम शिकायत कर देते हैं, आपको तो पता था मैं श्रीकृष्ण बनूंगा, हमें तो पता नहीं, हमें पता नहीं है कि हम देवता बनेंगे। पता है, हमें पता है। अपने देव स्वरूप को दो बार सामने लाएंगे सवेरे और शाम। बाबा को तो नफा था सारा दिन नेचुरल, हम दो बार से शुरू करेंगे। तो जिस चीज का हमें इस तरह नशा हो जाता है उसके संस्कार हमारे अंदर आने लगते हैं। देव रूप के संस्कार आ जाएंगे, वर्तमान के संस्कार लोग हो जाएंगे। कोई मुझे बाबा के बारे में बहुत अच्छी बात सुना रहे थे, अभी अभी मैं देखते हैं कि बाबा तो यही राजा थे ब्रह्मावर। कहते अच्छे छोटी बातों में तो संकल्प दे जाते ही नहीं देते थे, कोई छोटी बात करे तो जैसे बाबा को नो इंटरेस्ट, ये कुछ छोटा मोटा किसी ने नुकसान कर दिया कुछ नहीं, राजा ही है, चलना भी खाना भी राजा ही एकदम संस्कार दिखाई देते। तो हम अपने देव स्वरूप को याद किया, वो हमारे सामने आ जाए, ये शरीर छोड़कर मुझे ये बनना है, थोड़ी थोड़ी देर इस फीलिंग को बनाना, एक मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता। सवेरे के समय का आनंद लेने के लिए 5 स्वरूपों का अभ्यास रोज 5 बार करेंगे सवेरे। कौन से हैं 5 स्वरूप? अनादि आत्मा, मैं आत्मा राजा हूँ, स्वराज अधिकार। दूसरा देव स्वरूप, तीसरा इष्ट देव देवी पूज्य, देखो मैं मंदिर में हूँ। चौथा ब्रह्म, अपना भाग्य अपने स्वमान प्रभु मिलन वरदान ये सब याद कर जाओ, फिर मैं फरिश्ता। जैसे ये शरीर ही मेरा लाइट का हो गया, पहले एक मिनट में करेंगे पांचों, पांचों एक मिनट में, फिर 3 मिनट, फिर 3 मिनट, 3-3 मिनट करेंगे, 14-15-10 मिनट में पूरे कर दो भले, बहुत अच्छा योग हो जाएगा, एकाग्रता फर्स्ट क्लास होगी। सबको अनुभव करना है, 5 स्वरूपों के अभ्यास से मन आनंदित हो जाता है, और जब मन आनंदित हो जाता है तो एकाग्र हो जाता है, आनंदित मन ही एकाग्र होता है। अगर मन आनंदित नहीं तो एकाग्र नहीं, भटकता रहेगा। ये आनंद के पीछे भटक रहा है, मन को हम आनंदित करेंगे 5 स्वरूपों को याद करके, 5 चक्र लगाएंगे, 5 चक्र। पसंद है? तीव्र पुरुषार्थ, साधारण नहीं कि सवेरे उठे योग किया पूरा हो गया, और योग किया तो हॉल से जो निकले तो बातें करते करते कमरे में जा रहे हैं, जो बातें करते जाते हैं, बातें करते ही योग में पहुंचते हैं, योग के बाद भी बातें करते ही घर पहुंचते हैं, उनका योग लगता है? नहीं होता है। अंतर लक्ष्य बना लें, सवेरे 8 बजे तक अंतर, तब तो ज्यादा बातों की जरूरत नहीं, आप सेवा में भी जाएंगे तो वहाँ कोई बहुत बातों की जरूरत नहीं, जो किसी को जरूरी है उतना ही करेंगे। साथ में ये लक्ष्य रखेंगे कि केवल पौना घंटा योग कर लिया छुट्टी हुई बाबा की, ये नहीं, योग ही चलेगा 8 बजे तक। चाहे आप सेवा में हैं, मुरली सवेरे सुनते होंगे, सेवादारी अलग से होती है, यहाँ अलग से होती है, मुरली का भी रस लेंगे, मुरली का रस इस तरह लेंगे, आप 2 अभ्यास करेंगे, बैठते ही भगवान मुझसे बात कर रहा है। हर बार जब आप मुरली सुने अव्यक्त या साकार, ये बात अपने अंदर पक्की कर लें, भगवान मुझसे बात करने आया है, तो साथ साथ आपको लगेगा बाबा स्मृतियां दिला रहे हैं। और बीच बीच में अभ्यास करेंगे, ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही, कुछ भाई बहने तो जनरल क्लास में भी जाते होंगे ना, बाबा की किरणें पड़ रही है, बीच बीच में अभ्यास करेंगे। लक्ष्य रख लो पूरी मुरली के समय 10 बार ये याद करना है बाबा की उपस्थिति में। जैसे बरसात हो रही है हमारे ऊपर परमात्मा वाइब्रेशन की, इस तरह 8 बजे तक के समय को सभी आनंदित करेंगे। आनंदित समय हो वो हल्के रूप से नहीं, साधारण संकल्पों में, कामकाज के संकल्पों में नहीं, स्वमान के संकल्पों में। सवेरे उठते ही आप स्वमान याद कर सकते हैं, जब आए ना मैं ब्राह्मण तो स्वमान याद करूंगा। सारे पांच स्वरूपों से अभ्यास में सारे ही तो स्वमान हैं, आत्मा स्वराज अधिकारी मास्टर सर्व शक्तिवान देव स्वरूप इष्ट देव देवियां ब्राह्मण फिर परिष्ठा सारे ही स्वमान हैं। इससे चित्त श्याम कामकाज के लिए सभी अपनी अपनी प्लानिंग करेंगे। देखो पुरुषार्थ का सुंदर तरीका है, चार्ट लिखने से भी सुंदर तरीका। आप कहेंगे चार्ट लिखने से सुंदर क्या है? प्लानिंग करना। प्लानिंग किसे कहते हैं? मुझे ये 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 काम सारे दिन में करने हैं, हर काम में अलग अलग अभ्यास, ये है प्लानिंग। तो चार्ट रात को लिखा जाता है, इसलिए लोग चार्ट लिखते नहीं क्योंकि वैसा पुरुषार्थ नहीं होता जैसा चाहते हैं, तो लिखें क्या, हुआ ही नहीं तो लिखें क्या। एक दो दिन लिख भी दिया नहीं हुआ तो तीसरे दिन कहेंगे अब ये क्या रोज रोज लिखना है। प्लानिंग सवेरे होती है, प्लानिंग के अनुसार मनुष्य कार्य करता है। आपको ट्रेन पकड़नी है, प्लानिंग करेंगे ना, भोजन लेंगे, सामान पैक करेंगे, यहाँ से इतने बजे चलेंगे, करेंगे ना प्लानिंग। अगर प्लानिंग ही ना करें तो सबकी ट्रेन छूटेंगी। प्लानिंग से काम होता है ना, घरों में भी सब माताओं ने प्लान किया हुआ है ना अपने काम काज का। ऐसे ही पुरुषार्थ का प्लान करें, हर कर्म में क्या क्या अभ्यास करेंगे। खुद करना है ये सभी को, चाहे स्वमान का अभ्यास जोड़ो, भिन्न भिन्न तरह के योग का अभ्यास जोड़ो। तो कर्म क्षेत्र पर भी कर्म योग अच्छा हो जाए, ये होगा तीव्र पुरुषार्थ। अगर कर्म करते हमारा योग स्मृतियां स्वमान बिल्कुल भूला रहता है तो ये हो गया साधारण, क्योंकि इससे क्या होगा, कर्म का इफेक्ट हमारी स्थिति पर आएगा। और अगर हम कुछ भी अभ्यास करते रहेंगे तो हमारे वाइब्रेशन का इफेक्ट कर्मों पर जाएगा, इसे यज्ञ के कर्म दिव्य अलौकिक हो जाएंगे, मनुष्यों जैसे नहीं रहेंगे। कर सकेंगे सभी, खुद करेंगे सवेरे ही, रोज भी कर सकते हैं। जिनको बहुत तेज पुरुषार्थ करना है रोज प्लानिंग भी कर सकते हैं। एक प्लानिंग ये हो सकती है, अमृत वेले की तो अलग हो गई, सारे दिन के लिए केवल एक अभ्यास, कोई भी एक अभ्यास। आज मैं अभ्यास करूंगा, मैं इस देह में अवतरित हुई आत्मा हूँ, हर घंटे में 2-3 बार करूं। आज मैं अभ्यास करूंगी, बाबा मेरा है, भगवान मेरा है, हर घंटे में 2 बार अवश्य। आज मैं अभ्यास करूंगा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आज मैं अभ्यास करूंगी, सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। ऐसे 15-16 अभ्यास आप लिख सकते हैं और उसको एक एक दिन में या एक एक कर्म में जैसे आप चाहो बांट लें। श्याम का समय फिर से सुंदर अवस्था में बिताना है। माताओं की भी श्याम को सेवा पूरी हो गई, इनको भोजन खिलाना केवल उनकी रहेगी। वो उस समय का समझ लें, 6 बजे 6:30 बजे सेवा पूरी हो गई, अब सोने तक का समय फिर से साधना का है। सब लक्ष्य बना लें, हमें मधुबन में आकर अच्छी साधनाएं करनी है। सेवा के साथ साधना होती है तो सेवा खुशी भी देती है, बल भी देती है, पुण्य भी देना होता है। मैं सभी से एक रिक्वेस्ट और करूंगा, 4 बार सभी योग में बैठेंगे। बाबा का कमरा छोटा है इसलिए मैं बाबा का कमरा है बहुत ही नहीं कह रहा हूँ। शांति स्थल में बैठे हैं, हॉल ट्रेन में बैठे हैं, जहां भी आप बैठ सके, ठंड के अनुसार, गर्मी के अनुसार, मौसम के अनुसार, चार बार आपको 10-10, 15-15 मिनट अवश्य बैठना चाहिए रोज योग में। उसमें 500 रूपों का अभ्यास करो और भिन्न भिन्न तरह से योग, जैसे ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे बैठे हैं, इस पर एकाग्रता करो। ऐसा बैठने से एकाग्रता बढ़ेगी, योग में पुरुषार्थ में रस बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगी, इच्छा होगी करने की, नहीं तो करने की इच्छा नहीं होती। योग में बैठने की उनको इच्छा नहीं होती जिनका मन बहुत भटकता है। किसी का भटकता भी हो, अब शुरू कर दें यहाँ चार बार बैठने का, तो मन का भटकना बंद हो जाएगा। दिन में बाबा का कमरा खाली रहता हो, थोड़े बैठते हो, कभी आकर 10 मिनट भी बैठ सकते, लंबा समय नहीं, 5 मिनट 10 मिनट, ताकि आप एक सुंदर स्मृति ले जाएं, फिर आप घूम सकते हैं। भाई लोग तो घूमने जाते ही हैं, घूमने का लक्ष्य बातें करना या घूमना न हो, घूमने का अच्छे अभ्यास करना हो जाए, तो आपसे वाइब्रेशन फैलते रहेंगे, विश्व सेवा होगी ये प्रकाश की। इस तरह आप अपनी सुंदर एक प्लानिंग करें। इस पे बहुत कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि पुरुषार्थ एक लंबी यात्रा है और इसमें परिवर्तन चाहिए। एक ही पुरुषार्थ जीवन भर नहीं किया जा सकता, उसमें चेंज चाहिए। पुरुषार्थ में रस तब रहता है जब हम उसके अभ्यास के तरीके को बदलते रहते हैं। बाबा ने ऐसे बहुत सारे तरीके हमें सिखाते हैं, तो सभी अपनी प्लानिंग करेंगे। बोलो होगे, सभी कर लो खुद अपनी इच्छा से। मैं जो आपको यहाँ बताऊंगा वो आपसे नहीं होगी, 3 दिन करेंगे फिर ठंडा। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी प्लानिंग खुद शुरू करें और सीख लें श्रेष्ठ पुरुषार्थ की प्लानिंग क्या होती है, तो आप स्वयं क्रिएट करेंगे ना। जो मनुष्य खुद क्रिएट करता है उसमें उसको रस ज्यादा रहता है। किसी को बना बनाया भोजन मिल जाए उसका रस, और खुद बहुत प्यार से बना के खाए उसका रस, दोनों अलग होते हैं। तो सभी अब रात को भी कर सकते हैं, नहीं तो सवेरे उठ के कागज पे सिंपल प्लानिंग। ऐसी प्लानिंग आप नहीं करेंगे कि बहुत जबरदस्त कर लें और वो 2 ही दिन चले। कई लोग कर लेते हैं, बाबा की सुनते हैं, आज से 2 बजे उठना है, ये अलबेलापन छोड़ देते हैं, बस 2 ही दिन उठेंगे, तीसरे दिन फिर 6 बजे। ऐसी प्लानिंग नहीं, सिंपल एंड प्रैक्टिकल। हमेशा वही चीज सफल होती है जो सिंपल एंड प्रैक्टिकल। समझती हैं माताएं ये सब? सिंपल साधारण सहज, साधारण नहीं सहज, और प्रैक्टिकल माना जो की जा सकती हो रोज, जो हम लंबा समय कर सकते हो, 2-4 दिन नहीं। ऐसी प्लानिंग करें जो हमें आनंद दे, जो हमारे जीवन से जुड़ जाए, जो हमें भारी ना लगे, जो हमें ऐसा न महसूस कराए कि कुछ एक्स्ट्रा काम हमने अपने को दे दिया, बल्कि हमें ऐसा महसूस हो कि जीवन का बहुत बड़ा आनंद हो गया है। सभी करेंगे और बाबा की आत्माओं को पूर्ण करेंगे, क्योंकि बाबा ने कह दिया प्रत्यक्षता चेहरे और चलन से, टीवी से नहीं। सभी ध्यान रखिए, टीवी तो ज्ञान देने का, लोगों को खींचने का तरीका है, पर जय जयकार होगी चेहरे और चलन। Oh,